मानव जीवन की गौरव गरिमा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मानव जीवन सर्वोपरि सौभाग्य। देवियों भाइयों, जीवन कितना महत्वपूर्ण है, यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है।
इस समय जो सौभाग्य आपको मिला हुआ है, इस पर कभी आप गौर करें तो आप इस बात पर विचार मत करिए कि आप किस बिरादरी में पैदा हुए हैं, आपका खुद का मकान है कि नहीं, आप कहाँ तक पड़े हुए हैं, आपके पास कितने कुटुंबी हैं,
आपको सफलता मिली कि नहीं मिली, आप कैसा डिवीजन लाए, वगैरह वगैरह।
आपके पास जो सामान है उस पर आप विचार मत कीजिए, फिर क्या करें। आपको एक ऐसी बड़ी चीज मिली हुई है जिस नियामत पर आप बराबर गर्व अनुभव कर सकते हैं। वह क्या है? वह है इंसानी जिंदगी। आदमी का जन्म इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते।
मित्रों, इस जीवन का कितना महत्व है, अगर आपकी जिंदगी छिन जाए उस समय आपको यह पता चले कि हमको कितनी बड़ी नियामत मिली हुई थी।
इसकी अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है कि आप समय रहते इस बात का अंदाज लगा लें कि हमको ऐसा बहुमूल्य उपहार मिला हुआ है जिसके लिए समूचे संसार के प्रत्येक प्राणी को तरसना पड़ता है।
आदमी को बोलने वाली जिंदगी, सोचने वाली जिंदगी, पढ़ने लिखने वाली जिंदगी, जीविका के लिए कोई एक सूत्र साधन, खाने पीने का नियत समय, वस्तुओं के लिए सुव्यवस्था, सोने जागने का क्रम, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मित्र मंडली, जीविकोपार्जन के लिए कोई नियत स्थान वगैरह वगैरह।
इसके हिसाब से अगर आप देखें तो यह मालूम पड़ेगा कि दूसरे प्राणियों की तुलना में आपके और दूसरे प्राणियों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। आपको जो सुविधाएं मिली हुई हैं वह दूसरे प्राणियों को कहाँ मिली हुई है, बताएं न। मनुष्य के अलावा कपड़े कौन पहनता है, शादी विवाह किसके होते हैं, कुटुंब बनाकर के कौन रहता है, दवा दारू का इंतजाम किसके लिए है, बोलना किसको आता है, किताबें कौन पढ़ सकता है, वगैरह। आपको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, आप कभी एकांत में बैठकर के विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि भगवान के पास में जो कुछ भी सबसे कीमती चीज थी उसने आपके सुपुर्द कर दी।
भगवान के खजाने की सबसे बड़ी संपदा मनुष्य जीवन। मित्रों,
अगर आपको कभी भगवान के खजाने को देखने का अवसर मिले तो आप यह तलाश करना कि सबसे बेहतरीन चीज प्राणियों को देने के लिए उनके पास क्या हो सकती थी।
तब आपको एक ही बात का पता चलेगा कि भगवान के पास सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती नियामत, सबसे कीमती संपदा अगर कोई है तो वह मनुष्य की जिंदगी। मनुष्य की जिंदगी जिसको मिल गई, समझना चाहिए भगवान का अनुग्रह पूर्ण हो गया।
इससे ज्यादा भगवान के पास देने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी प्राणी को दे और निहाल कर दे।
आप निहाल हो गए हैं, इस बात को आप समझिए।
कल्पना कीजिए मौत आई और आपके हाथ से जिंदगी छीन ली गई। छीनी हुई जिंदगी पर आप गौर कीजिए कि वह कितनी कीमती थी जो आपको अब दोबारा नहीं मिलने वाली है। अब आपको दूसरी योनियों में जाना है, गधे में जाना है, घोड़े में जाना है, बंदर में जाना है, कबूतर में जाना है, दूसरी चिड़िया मेढक आदि में जाना है।
मित्रों,
तब आप जरा अंदाज लगाए आपके हाथ में कितना मौका मिला हुआ था जिसे आपने गंवा दिया। आपने कभी यह कोशिश नहीं की कि इसका महत्व समझें और महत्व समझने के साथ साथ आप इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयारियां करें। आप इसकी तैयारी कीजिए, महत्व समझिए, आप इसको ठीक तरीके से उपयोग करने की तैयारी करिए। इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? एक तैयारी यह करनी पड़ेगी कि आपको नए ढंग से अपनी जिंदगी पर विचार करना शुरू करना होगा। क्या शुरू करें? आप यह मानकर चलिए कि जिंदगी एक बहुत लंबी कड़ी है, एक बहुत लंबी वाली श्रृंखला है जिसमें आपको लाखों जन्मों तक जिंदा रहना था। आपके लिए एक ही मौका ऐसा है जो मनुष्य के जीवन के रूप में आपको मिला हुआ है। आपको जो मनुष्य की जिंदगी के रूप में अवसर मिला हुआ है, आप उसके साथ जुड़े हुए भावी जीवन की संभावनाओं के बारे में विचार कीजिए। जीवन का सदुपयोग कैसे करें?
मित्रों,
आज हर आदमी जो काम करता है कल का विचार करके ही तो करता है। आज आप जो काम कर रहे हैं कल के ख्याल से कर रहे हैं, कल क्या करना पड़ेगा। आज आपने जो नौकरी या खेती बाड़ी की है उसका मतलब यही तो है कि आपको कल का गुजारा करने के लिए ठीक मिलेगा। मकान आप किस लिए बनाते हैं? आज तो आप धर्मशाला में भी रह सकते थे, होटल में भी रह सकते थे, परंतु यही तो विचार करते हैं कि कल हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, बुढ़ापे में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे,
हमारा कुटुंब कहाँ रहेगा।
इसलिए विचार करते हैं कल की संभावनाओं के लिए आज की व्यवस्था बनाना हर एक समझदार आदमी का काम है। आप एक लंबी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप लंबी वाली जिंदगी जी रहे हैं तो आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आपका कल किस तरीके से शानदार हो। कल के शानदार होने के लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा। एक ही बात करनी पड़ेगी कि आप अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में इस बात का समावेश करें कि हमारा कल भविष्य किस तरीके से उज्ज्वल रहे।
मित्रों,
हम और आप में से अधिकांश व्यक्ति यही गलती करते हैं कि कल की बात पर विचार नहीं करते, केवल आज की बात पर विचार करते हैं। कल क्या परिणाम निकलेगा इस बात को हम भूल जाते हैं। आज हमको किन बातों में फायदा है, बस इतनी ही बात पर हमारी दृष्टि सीमित रहती है और आज हमको जो फायदेमंद मालूम पड़ता है उसी को करने पर आमादा हो जाते हैं, भले ही उसको करने से हमारा कल खराब होता हो। क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि कल के परिणामों पर हम ज्यादा विचार करें और आज की गतिविधियों का निर्धारण हम इस तरीके से करें जिससे हमारा कल बहुत अच्छा बनता हो, शानदार बनता हो। अच्छा बनता हो उसके लिए हम कोशिश करें तो हम एक ऐसी रीति नीति को अपनाने में समर्थ बन सकते हैं जो हमारे लिए हर तरीके से सुखदायक शांतिदायक बन सकती है। आने वाले कल को ध्यान में रखकर जिए जिंदगी।
साथियों,
आपको दूसरे आदमियों पर गौर करना चाहिए। जो आदमी तुरंत फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं, आपने देखा नहीं वे किस तरीके से हैरान होते हैं और किस तरीके से अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। अपराधियों को आप जानते हैं ना, शराबियों को आप जानते हैं ना, आलसियों को आप जानते हैं ना, रिश्वतखोरों, जमाखोरों और भ्रष्टाचारियों को आप जानते हैं ना। वे कौन हैं? ये सब वे आदमी हैं जो आज की सुख सुविधाओं को ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होना है। शराबी इस समय के मजे को देखता है और यह देखता है कि इस समय हमको कैसा जायका आ रहा है,
कैसा आनंद आ रहा है।
वह इस बात को भूल जाता है कि कल हमारा लीवर खराब होने वाला है, दिमाग खराब होने वाला है, जिंदगी में कमी होने वाली है, हमारी अकल खराब होने वाली है,
हमारे कुटुंब की तबाही होने वाली है,
हमारी बदनामी होने वाली है। यह कल तो होने वाली है ना, कल का कोई ख्याल ही नहीं है।
मित्रों,
जिसको कल का ख्याल नहीं आता उसको शराब पीने में कोई एतराज नहीं है,
लेकिन जिसको कल का ख्याल है, अपने शरीर का भी ख्याल है, अपनी बदनामी का ख्याल है और अपनी आमदनी का ख्याल है, जिसको अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का ख्याल है, उसे जैसे ही यह ख्याल आएगा तो वह शराब पीने से एतराज करने लगेगा
और शराब पीना छोड़ देगा। जिस व्यक्ति में दूरदर्शिता की कमी है वह सिर्फ आज की बात पर विचार करता है। अपराधियों के बारे में यही बात है, शराबियों के बारे में भी यही बात है, जुआरियों को आपने देखा है ना, चोरों को आपने देखा है ना,
इस समय फायदा उठा लेते हैं।
अरे भाई,
इस समय तो फायदा उठा लेते हो, पर भविष्य तुम्हारा क्या बनेगा? दूसरा आदमी तुम्हारी सहायता क्यों करेगा?
दूसरा आदमी तुम्हें अपने पास क्यों बैठने देगा? जहाँ कहीं भी किसी का सहयोग मांगने जाएंगे वह तुम्हारे बारे में यही ख्याल तो करेगा ना कि चोर है और उचक्का है। हमारे पास रहेगा तो हमको हैरान करेगा, किसी न किसी तरीके से तंग करेगा। इसलिए अच्छा होते हुए भी, कुटुंबी होते हुए भी, मित्र होते हुए भी, अपने खानदान और परिवार का सदस्य होते हुए भी, हर आदमी यही चाहता है कि यह किसी तरीके से काला मुंह करे और हमसे दूर चला जाए।
मित्रों, क्यों,
क्या वजह हुई?
क्राइम, क्राइम अपराध आदमी के व्यक्तित्व को खत्म कर देता है। आमदनी क्या मिली क्या नहीं मिली आपसे मैं यह नहीं कहता।
आपने किसी की जेब काट कर क्या कमा लिया, चोरी बेईमानी से क्या कमा लिया, यह आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन आपने अपना भविष्य जरूर खराब कर लिया। अब आपको सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। जब लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि आप बुरे काम करने वालों में से हैं, क्योंकि अपराध छिपता तो है नहीं, तब फिर आप विश्वास रखिए, न आपके पास अच्छे ग्राहक आ सकते हैं, न कोई आपको उधार देने को रजामंद हो सकता है और न आपका कोई मुसीबत में सहकारी हो सकता है। अपराध का रास्ता अख्तियार करने के बाद में आपने कमाया होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन आपने भविष्य अपना कितना खराब बना लिया। आप जानते नहीं हैं। आप किसान को जानते हैं ना, विद्यार्थी को जानते हैं ना, माली को जानते हैं ना, कलाकार को जानते हैं ना। ये सब वे आदमी हैं जिनको कल का ख्याल रहता है। आज उनको नुकसान पड़ता है तो खुशी खुशी इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार रहते हैं।
किसान नुकसान उठाने को तैयार रहता है।
आज बीज बो रहा है, आज मेहनत कर रहा है, आज खाद पानी सिर पर ढोकर के खेत में लगा रहा है। नुकसान के अलावा यह और क्या है, जरा बताए तो सही।
लेकिन उसको ख्याल है कि इससे कल हमको अच्छी फसल मिल सकती है और हम अच्छा फायदा उठाएंगे,
इसलिए आज की तबाही, आज का नुकसान, आज की मेहनत को सही मानता है। भले ही इसका कोई मुनासिब फायदा न मिलता हो तो भी बराबर मेहनत करने के लिए तैयार रहता है।
अदूरदर्शिता के दुष्परिणाम। मित्रों,
आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्या?
आपको करना चाहिए। विद्यार्थी को आपने देखा है ना?
विद्यार्थी किस तरीके से किताब पढ़ने में लगा रहता है, रात को जागता रहता है, फीस भी दाखिल करता है,
स्कूल भी टाइम पर जा पहुंचता है।
दूसरी ओर आप उस बच्चे को देखिए जो लावारिशों की तरीके से घूमता रहता है, घर से पैसे ले जाता है फीस दाखिल करने के लिए, घर से पैसा ले जाता है किताबें खरीदने के लिए, लेकिन न तो वह किताबें खरीदता है न फीस दाखिल करता है, सिर्फ आवारा गर्दी में उधर से उधर घूमता रहता है। उसने आज का जायका उठा लिया ना?
हाँ, लेकिन आज का जायका उठा करके उसने क्या फायदा प्राप्त किया?
कल का भविष्य खराब कर लिया ना? उस बेचारे का कल क्या होने वाला है? बिना पढ़ा रह जाएगा, हर साल फेल होता रहेगा, बच्चों में बेवकूफ और बुद्धू समझा जाता रहेगा।
सारे घरवाले उसे हिकारत की दृष्टि से देखते रहेंगे। अंततः अपनी खराब जिंदगी को लेकर के किसी ऐसे बुरे लोगों की सोहबत में जा फंसेगा जहां की उसका भविष्य अंधकार में होता हो। मित्रों,
यह सब कैसे हो गया?
अदूरदर्शिता के कारण। अगर उस बच्चे में दूरदर्शिता रही होती तो उसने ऐसे कदम न उठाए होते।
तब उसने समझदार बच्चों की तरीके से दिन रात मेहनत की होती,
अच्छा डिवीजन ले आया होता, अच्छा डिवीजन ला करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली होती और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अलावा कोई ऐसा पद प्राप्त कर लिया होता जिससे कि सारी जिंदगी खुशहाली से बीत जाती।
अदूरदर्शिता ही तो है ना जिसकी वजह से बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। अदूरदर्शिता ही तो है ना जिसकी वजह से शराबी तबाह हो गया।
अदूरदर्शिता ही तो है ना जिसकी वजह से अपराधी ऐसा हो गया। और वह दूरदर्शिता ही है जिसकी वजह से पहलवान पहलवान बन गया, जिसकी वजह से विद्वान विद्वान बन गया,
जिसकी वजह से धनवान धनवान बन गया। उन लोगों ने कल के लिए आज अपने आप के मन को मारा, अपने आप को रोका, अपने आप को एक खास मकसद में लगाए रखा और पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ किसी खास काम में अपने आप को भुला दिया।
मित्रों,
अपने आप को किसी खास मकसद के लिए भुला देने वाले वे आदमी जो भविष्य के बारे में विचार करते हैं, बड़े समझदार मालूम पड़ते हैं।
आपको भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए।
आपकी जिंदगी, आपका बुढ़ापा किस तरीके से शानदार बीते, इसके लिए आपको जवानी की हिफाजत करनी चाहिए। आपके घर की आर्थिक स्थिति भविष्य में डगमगाने न पाए, इसके लिए आज से ही आपको अपनी किफ़ायतसारी पर गौर करना चाहिए और अपने घर के रहन सहन के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में विचार करना चाहिए। बच्चे भविष्य में आपकी इज्जत करें, इसलिए आज आपको अपने तौर तरीके ऐसे बनाकर रखना चाहिए जिससे कि बड़े होने पर जब आप कमजोर और असमर्थ हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब आपके ये बच्चे जो आज आपको बुरे काम करते हुए देखते हैं, तब आपको धिक्कारने न पाएं। इसलिए आप अपने ढांचे को अभी से क्यों न बदल लें, भगवान के दरबार में शान से हों उपस्थित।
मित्रों,
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भगवान के दरबार में पेश होना पड़ेगा। इस काम से आपका बचाव नहीं हो सकता। आप जिस दिन जन्मे थे उस समय भगवान ने आपको बहुत कीमती शरीर दिया था और इस उम्मीद से दिया था कि आप इसका ठीक इस्तेमाल करेंगे
और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना लेंगे
और उसकी दुनिया को शानदार बनाने के लिए उसकी सेवा करने में समर्थ हो सकेंगे।
आप उसके विश्व उद्यान को सुरम्य और सुसंस्कृत बनाने में हिस्सा बटाएंगे। भगवान ने आपको दिया है और आप भगवान की दुनिया को देंगे।
इस ख्याल से उसने आपको जन्म दिया था, लेकिन जब आप धीरे धीरे मौत के नजदीक जा रहे हैं और आपको भगवान के दरबार में पेश होने का मौका मिलने वाला है, तब आप जरा विचार तो कीजिए कि आप उसे क्या जवाब देंगे। आप यह विचार मत कीजिए कि भगवान जी आपसे यह पूछने वाले हैं कि आपने कितनी माला का जप किया था, किन किन तीर्थों की यात्रा की थी,
क्या क्या कर्मकांड कराए थे।
भगवान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यह सब आपकी मर्जी के ऊपर है। यह अपने मन की हिफाजत के लिए और मन को ठीक रखने के लिए है।
मित्रों, भगवान ने तो एक चीज आपको अमानत में दी थी और वह थी जिंदगी,
और वह सिर्फ आपसे जिंदगी के बारे में सवाल करने वाला है।
जब आप जाएंगे तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा?
यह कि आपको जो बेशकीमती जिंदगी मिली थी उसे आपने कहाँ खर्च कर डाली, किन किन कामों में खर्च कर डाली। आप अभी से इसका जवाब तैयार कीजिए। जीवन को गवाए नहीं, उपयोगी बनाए। आपका यह जवाब माकूल नहीं है कि हमारे पास पेट भरने के लिए, कमाने के लिए इतना काम था,
कुटुंब को पालने के लिए इतना काम था,
इसलिए इस काम में हम सारी जिंदगी लगे रहे।
ऐसा मत कहिए।
आपके हाथ बहुत बड़े हैं और आपकी अकल बहुत बड़ी है और आपको कमाने के लिए बहुत से साधन समाज में मिले हुए हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, जरा बताना।
मुट्ठी भर आपकी आवश्यकताएं हैं।
चार रोटी आप खाते हैं। चार रोटी तो आप दो घंटे की कमाई में खा सकते हैं। आप तीन गज कपड़ा पहनते हैं ना, इसकी कितनी कीमत होती है? महीने भर में कितना खर्च करते हैं? आपके व्यक्तिगत खर्च और आवश्यकताएं बहुत कम हैं।
साथियों,
आप फिजूल खर्चियों में उड़ा डालें तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है? फिजूल खर्चियों के लिए तो कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है।
आप चाहे जितना खर्च कर डालिए, लेकिन आपकी वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम हैं। और कुटुंब को अगर आप स्वावलंबी बनाने और संस्कारी बनाने तक का अपना उद्देश्य सीमित रखा हो तो आपको कुटुंब पालन करने में जरा भी दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए।
कुटुंब में ढेरों आदमी ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मसलन आपकी धर्मपत्नी है ना,
स्वास्थ्य उनका अच्छा है ना,
तो उन्हें सारे दिन खाना बनाने में क्यों लगाए रखे। खाना आप सब मिलकर थोड़े समय में पका सकते हैं, बाकी समय में आप इस तरीके से उनको शिक्षित और संस्कारित कर सकते हैं जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। घर के लिए कोई आर्थिक कमाई न कर सकती हूँ तो बचत तो कर ही सकती है।
मित्रों,
खाना पकाना भी तो एक कला है, आमदनी है। कपड़े धोना और सिलाई करना भी तो एक आमदनी है। आपके घर में साग भाजी उगा देना भी तो एक आमदनी है।
यह सब स्वावलंबन हुआ ना।
स्वावलंबन की दृष्टि से यदि आप घर के कई लोगों को इस लायक बना दें और उनसे भी कुछ काम करने की बात कहें, एक आदमी कमाए और सब बैठकर खाएं, यह बुरी बात है। हर आदमी को आप स्वावलंबन क्यों नहीं सिखा सकते? अगर आप इस तरीके से स्वावलंबन सिखाएं तब आपके ऊपर से वे बातें खत्म हो जाती हैं।
अभी तो आपको परिवार का भरण पोषण इसलिए भारी पड़ रहा है कि आप अकेले कमाकर और सबको बैठाकर खिलाना चाहते हैं, सबको निकम्मा बनना चाहते हैं।
यदि सारे कुटुंबियों को, छोटे बच्चों को छोड़कर जो समर्थ व्यक्ति हैं, उन्हें किसी तरीके से किसी न किसी काम में लगाए रखने की बात को यदि आप विचार कर लें, तो आपको कुटुंब पालन में क्या दिक्कत पड़ सकती है?
कुटुंब का परिपालन आपको भारी क्यों पड़ना चाहिए?
आपको पेट भरने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए?
मित्रों,
अगर आप औसत भारतीय नागरिक के तरीके से जिंदगी जिये और किफायतसारी से रहें तो आप यकीन रखिए थोड़े में ही आप गुजारा कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सारी मुसीबतों से आपका बचाव होना संभव है। भगवान का काम करने के लिए आपको ढेरों का ढेरों समय मिलना चाहिए। आपकी अगर कोई पुरानी स्थायी आमदनी नहीं है तो भी 8 घंटे की मेहनत और मशक्कत करने के बाद में आपका गुजारा भली भांति से हो जाना चाहिए। काम करने के घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
8 घंटा अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार शारीरिक श्रम आजीविका के लिए निर्धारित है।
हर आदमी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो 8 घंटे में गुजारा कर सकता है।
फिर इसके बाद 7 घंटे सोने के मान लीजिए।
7 घंटे से ज्यादा सोने की बच्चों को भी जरूरत नहीं पड़ती। 7 घंटे तो आपके लिए काफी होने चाहिए, यदि आप समय खराब न करें तब। इस तरह 7 घंटा सोने के लिए और 8 घंटे काम करने के लिए कुल 15 घंटे हुए। 5 घंटे आप फालतू कामों के लिए रखिए। शौच स्नान और खाने में कितना समय लगता है?
1 घंटा सवेरे का मान लीजिए, 1 घंटा शाम का मान लीजिए।
यह तो दैनिक जरूरतों के काम हुए, और कोई हो तो जरा बताना। इस तरीके से 5 घंटे दैनिक कार्यों में लगाने के बाद में आपको कुल मिला करके 20 घंटे अपने दैनिक कामों में और पारिवारिक कामों में खर्च करने के लिए काफी होने चाहिए। इसके बाद में जो 4 घंटे बचते हैं उसमें आप भगवान के कामों को कर सकते हैं,
जिससे कि आपकी जिंदगी सार्थक मानी जा सके,
जिससे आप भगवान के दरबार में जब कभी जाएं तो सीना तानकर यह कह सके कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और अपने परिवार का स्तर बढ़ाने के लिए और समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए कई मूल्यवान काम किए हैं।
आप ऐसा कीजिए, भगवान के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए।
अगर आप उनको सही जवाब देने में समर्थ हो गए तो आप विश्वास रखिए अभी तो आपको सामान्य प्राणियों से मनुष्य का दर्जा मिला है, कल आपको महामानव का मिल सकता है, ऋषियों का दर्जा मिल सकता है, देवात्माओं का दर्जा मिल सकता है।
अभी तो आप मानवीय गरिमा से लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में आपको स्वर्गीय जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है।
आप जीवन मुक्तों में गिने जा सकते हैं।
आप सारे संसार में भगवान के उत्तराधिकारी और युवराज कहलाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं।
कब पहुंच सकते हैं? जब आप जीवन का ठीक से उपयोग करना सीख पाए तब।
अतः आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जिंदगी को महत्वहीन मत मानिए, जिंदगी को खंडित मत कीजिए।
जिंदगी में आज के ही लाभों पर विचार मत कीजिए,
वरन भविष्य का भी विचार कीजिए और ऐसी नीति अख्तियार कीजिए जिससे कि न केवल आज का दिन शानदार बन सके बल्कि भविष्य को उज्ज्वल बनाने का भी एक अच्छा खासा द्वार खुल सके। आप ऐसा कीजिए, जीवन का महत्व समझिए, जीवन का सदुपयोग कीजिए और भविष्य को उज्ज्वल, सुखमय और आनंदमय बनाइए। आज की बात समाप्त। ओम शांति है।